الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید زیر درس ہے. ہم آیت 26 سے مطالعے کی ابتدا کریں گے. اس سے پیچھے یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت میں یہ اہتمام کریں گے کہ جو چیز بھی انہیں دی جائے گی، جب وہی چیز دوسری مرتبہ دی جائے گی یا تیسری مرتبہ دی جائے گی، تو وہ نئے ذائقے، نئے حسن اور نئی لذت کے ساتھ ملے گی. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ یہ جو فرمایا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کا حقیقی مصداق کیا ہے؟ یہاں ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان یا تو کسی چیز کو اپنے حواس کی گرفت میں لے لیتے ہیں، یا اس کا تصور قائم کرتے ہیں، اسی صورت میں اسے کوئی نام دیتے ہیں اور پھر لفظ وجود میں آتا ہے. جب کسی چیز کو نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سونگا ہے، وہ کبھی حواس کی گرفت میں نہیں آئی، اس کے تصورات بھی ہماری زبان کے لیے اجنبی ہیں، تو پھر تمثیلی کا طریقہ رہ جاتا ہے جس سے اس کو بیان کیا جائے. تو اس لحاظ سے اس سے پیچھے جنت کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اسی سے میں نے مضمون کو آگے مربوط کر دیا ہے. چنانچہ دیکھیے قوسین میں لکھا ہے یہ جنت کی تمثیل ہے، یعنی پیچھے جو بات بیان ہوئی وہ ایک تمثیل ہے. اور کس چیز کی تمثیل ہے؟ جنت کی تمثیل ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب موقع تنبیہ کی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے. پیچھے ایک تمثیل بیان کی، اسی سے مضمون اٹھا کے ایک مناسب موقع تنبیہ کر دی. چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے یہاں سے آگے آیت 27 تک یہ ایک مناسب موقع تنبیہ ہے، یعنی ایسا موقع کلام میں پیدا ہو گیا کہ اس کی مناسبت سے کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے. یہاں سے آگے آیت 27 تک یہ ایک مناسب موقع تنبیہ ہے جو سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی ہے. یعنی ایک جملہ معترضہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک پورا پیرا یا ایک پورا سلسلہ کلام اسی طریقے سے آ جاتا ہے. تو تمثیل کے طور پر یہاں جملے کا لفظ استعمال کیا ہے جو سلسلہ کلام میں جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی ہے. یثرب اور اس کے نواح کے مشرکین کو اس میں متنبع کیا گیا ہے کہ یہود کی پیروی میں وہ تمثیلات کے بارے میں بیہودہ حجت ترازی کا مذاق اپنے اندر پرورش نہ کریں. اس سے پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ چونکہ تمثیل کے اسلوب میں ہیں، اور یہود کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ ابتغائے فتنہ، یعنی فتنے کو تلاش کرنے کا جو ذوق باز طبیعتوں میں ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے انہوں نے متشابہات امور کو اپنے زیغ و زلال کا سبب بنا لیا. اسی طرح کی صورتحال کا وہ بیش نصارہ کے ہاں پیش آئی. یہ دونوں فرقے ہم سے پہلے کے مسلمانوں کے فرقے ہیں. تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں یثرب کے مشرکین کو خطاب کیا ہے. یہ خطاب پیچھے سے شروع ہو چکا ہے، یہ توجہ دلائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس خدا کی ایک نعمت آئی ہے، تم اللہ کے پیغمبر کو لے آئے ہو، وہ تمہاری بستی میں موجود ہیں، تمہارے سامنے وہ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا، اس کی محکمات پر توجہ رکھنا، اس کے حقائق کو سامنے لانا، یہ تمہارا ہدف اور تمہارا مقصود ہونا چاہیے، इससे हटकर अगर यहूद की पैरवी में इस तरह की तमसीलों से मज़मून पैदा करने और हुज्जत तराजी के नए नए अंदाज इख्तियार करने को अपना मजाक बना लोगे, इसका ज़ौक अपने अंदर पैदा कर लोगे, तो ये चीज़ तुम्हारी बर्बादी का बायस बन जाएगी। चुनाचे मैंने लिखा है कि ये उनके लिए हक से महरूमी का बायस बन जाएगा। इस चीज़ को सामने रख कर यसरब के मुशरिकीन को तवज्जो दिलाइए, यसरब और उसके नवाह के मुशरिकीन जो यहाँ पर इल्तिफात के साथ मुखातब हुए हैं, यानी असल में तो सूरा यहूदी को मुखातब करेगी, बनी इसराइल के लिए खिताब इस तमहीद के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन तमहीद में थोड़ी देर के लिए रुख पलट कर जिस तरह के खतीब अपना रुख पलटता है, यसरब के मुशरिकीन को भी खिताब कर लिया है, और ये उसी खिताब में एक जुमला मोतरजा है। चुनाचे फरमाया कि ये जन्नत की तमसील है और अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि किसी हकीकत की वजाहत के लिए, ज़ाहिर है कि ये अल्फाज इजहार मुद्दा के लिए ज़रूरी हैं, उनका मैंने इजाफा कर दिया है, किसी हकीकत की वजाहत के लिए वो मच्छर या इससे भी हकीर किसी चीज़ की तमसील बयान करे। इस पर भी अल बयान का एक नोट है, असल में यजरब मसलम मा बउज़तम फमा फौ कहा के अल्फाज आए, यानी ये आयत के अल्फाज हैं, इनमें मसलन मफूल और बउज़तन उससे बदल वाक़ हुआ है। इस जुमले की तालीफ चूँकि ज़रा नादिर है, तो इस वजह से अरबियत का ज़ौक रखने वालों को तवज्जो दिलाई है कि इस तालीफ की नौइयत क्या है। मसलन मफूल और बउज़तन इससे बदल वाक़ हुआ है, मुद्दा ये है कि जन्नत और उसकी नेमतों का जो ज़िक्र उकूर हुआ है वो तमसीली के उसलूब में है, यानी क्या चीज़ बयान करना पेश नज़र है, वो ये है कि पीछे जन्नत का ज़िक्र हुआ है उसमें तमसील ही का उसलूब इख्तियार किया गया है, और इसकी वजह ये है कि जन्नत और दोज़ख के बारे में जो बात भी इस दुनिया में समझाई जा सकती है तमसील के उसलूब ही में समझाई जा सकती है। तमसील के उसलूब में, यानी इस दुनिया की चीज़ों से मिसाल देकर, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। लिहाजा तुम्हारी निगाह भी असल हकीकत पर रहनी चाहिए। अब दो रवैये होंगे, एक रवैया ये है कि उसमें जो असल हकीकत बताना पेश नज़र है, आदमी उसको समझने, अख्स करने और उसको अपनी ज़िंदगी का लाया अमल बनाने की कोशिश करे, और दूसरा रवैया ये है कि वो तमसील में अपने जहन को गलतान करके बैठ जाए। ये दो रवैये हो सकते हैं। लिहाजा तुम्हारी निगाह भी असल हकीकत पर रहनी चाहिए। तमसील के तौर पर जिन बागों और नहरों का जिक्र हुआ है उनमें उलझ कर नहीं रह जानी चाहिए, यानी अब बहस इस पर शुरू हो जाए कि नहर ज़मीन में खोदी जाएगी और नहर किसी ख़ास चीज़ की होगी, वो ऐसी होगी जैसी दुनिया में है। एक तसव्वुर दिलाया गया है खुदा की जन्नत क्या होगी, कैसे होगी, हम उसकी हकीकत को यहाँ नहीं समझ सकते। हाँ, अलबत्ता हम नहरों से और हम दरियाओं से और हम बागों से और हम फूलों से और हम फलों से जिस तरह का हज़ उठाते हैं और जिस नौइयत की यहाँ चीज़ें हैं, बहरहाल वो इससे मिलती जुलती कोई सूरत हाल होगी। अल्लाह जब किसी हकीकत को वाज़े करना चाहता है तो मक्खी और मच्छर जैसी हकीर चीज़ों को भी मिसाल में पेश कर देता है। इल्म व हिदायत के जुया उसकी कदर करते हैं, वो उसका मजाक नहीं उड़ाते। ये चीज़ है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि निगाह इस पर रखो कि जिस कायनात के परवरदिगार ने ये दुनिया इतनी खूबसूरत बना दी है, इसमें जिन जिन जगहों पर उसने इस खूबसूरती को नुमाया किया है, इंसान दंग रह जाता है, यानी वो सवाए इसके कुछ अपने लिए चारा नहीं पाता कि बेख्तियार पुकार उठे कि सुभान अल्लाह। सब्ज़े को देखिए, दरियाओं के तलातुम को देखिए, खूबसूरत साहिलों को देखिए, इसमें चलती हुई हवाओं को देखिए, फलों फूलों को देखिए, यानी ये मालूम होता है कि जैसे बड़ी फैयाजी के साथ, बड़ी करम नवाजी के साथ एक आर्टिस्ट ने अपने जमालियात के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं जिनको इधर उधर बखेर दिया है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक सूरत यह है कि इसको हम समझें और इसकी रोशनी में ये समझने की कोशिश करें कि जिस परवरदिगार ने ये खूबसूरती, ये जमाल, ये हुस्न, ये नुदरत और ये जिद्दत पैदा कर दी है, जिसने मखलूकात में इतना तनव्वो रखा है, यहाँ जिसने इतना खूबसूरती का और जमाल का इजहार किया है, वो जो जन्नत बनाएगा जिसको वो ख़ुद अपना शाहकार कहता है, वो क्या चीज़ होगी। एक दूसरी चीज़ ये है कि आदमी इसी तरह की मुमासलतों में उलझ कर रह जाए और उस चीज़ का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो कुरान मजीद ने यहाँ ये तवज्जो दिलाई कि जन्नत को भी एक तमसीली में समझाया जा सकता है, और अल्लाह ताला जब किसी हकीकत को वाज़े करना चाहते हैं तो वो इससे नहीं शर्माते कि मच्छर की तमसील से या मक्खी की तमसील से बात समझा दें। ये सब उनकी मखलूकात हैं। तमसील में असल चीज़ ये नहीं होती कि मच्छर की तमसील है या मच्छी की तमसील या मक्खी की तमसील है, उसमें असल चीज़ ये होती है कि क्या मुद्दा पेश नज़र है, क्या बात बताना पेश नज़र है, लोगों को किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। कुरान मजीद में इस नौईयत की तमसीलें भी आगे बयान हुई हैं। तो इल्म व हिदायत के जुया उसकी कदर करते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाते। इसके बाद इरशाद हुआ कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यालमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। फिर जो मानने वाले हैं, यानी अल्लाह तो मिसाल बयान कर देता है, फिर जो मानने वाले हैं वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये उनके परवरदिगार की तरफ से हक आया है। वह अम्मल लज़ीना कफ़रू, और जो नहीं मानने वाले वो कहते हैं, फ़यकूलून माज़ा अराद अल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ने इस मिसाल से क्या चाहा है, क्या चीज़ पेश नज़र थी। युदिल्लु बही कसीरम व यहदी बही कसीरा, अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करता और बहुतों को राह दिखाता है। वमा युदिल्लु बही इल्लल फासिकीन, और वो इससे गुमराह तो ऐसे सरकशों ही को करता है जो अल्लाह के अहद को उसके बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل, اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں, ويفسدون في الارض, اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, اولئک هم الخاسرون, یہی ہیں جو نامراد ہیں۔ تو اب اس پہ دیکھیے کہ یہ ارشاد ہوا کہ جب اللہ اس طرح کی کوئی مثال دیتا ہے तो वो लोग जो मानने वाले हैं, यानी जो हकीकत को समझ चुके हैं, जिन्होंने ये चीज़ जान ली है कि अल्लाह ताला इन मिसालों से किन चीज़ों की वजाहत करता है, उन्होंने पहले दलाइल की बुनियाद पर ये मान लिया कि ये अल्लाह की किताब है, ये मान लिया कि ये अल्लाह के पैगंबर पर आई है, ये मान लिया कि हमारे सामने ये हमारी हिदायत के लिए पेश की जा रही है। तो उनका रुझान ये होता है कि वो फिर इन चीज़ों की हकीकत पर अपनी निगाह रखते हैं। चुनाचे उसको बयान किया है कि उनके सामने जब इस तरह की कोई तमसील आती है तो वो तो ये कहते हैं कि अन्नहुल हक़ मिर रब्बिहिम, ये हमारे परवरदिगार की तरफ से हक आया है। और वो जो न मानने वाले हैं, जिन्होंने फैसला कर लिया है, ये उन्हीं लोगों का जिक्र है जिनके बारे में पीछे कहा कि बाद ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो नहीं मानेंगे, उनके लिए अब बराबर है, उन्हें आप खबरदार करें या ना करें, वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जो नहीं मानने वाले वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या चाहा। असल में यहाँ माज़ा अराद अल्लाह बेहाज़ा मसला के अल्फाज हैं। इन पर मैंने लिखा है कि इनमें मसलन इसमें इशारा से हाल है, ये तो उसकी नहवी तालीफ है, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है यानी ये किस तरह की मिसाल है, क्या खुदा को तमसील के लिए मक्खी और मच्छर ही मैसर हुए हैं, ये वो बात है। यानी वो सुनते हैं तो कहते हैं ये क्या बात हुई, अल्लाह का कलाम आसमान से आया है, आंसू अफलाक से नाजिल हुआ है, खुदा के पैगंबर पर उतारा गया है, और देखिए इसमें मच्छर की मिसाल, इसमें मक्खी की मिसाल। तो ये मजाक उड़ाने का एक अंदाज़ वो इख्तियार करते हैं, और ये नहीं देखते कि अदब में जब कोई तमसील बयान की जाती है तो उसमें मकसूद क्या होता है। अब कुरान मजीद ने एक मुकाम के ऊपर बुतों की बेबसी को बयान करते हुए ये कहा है ना कि अगर उनकी नाक पर मक्खी भी आके बैठ जाए तो वो उसको उड़ा नहीं सकते, और बदकिस्मत हो तुम लोग कि इन पत्थरों की पूजा करते हो। तो ये तमसील जिस हकीकत को बयान करती है वो तो बड़ी गैर मामूली हकीकत है, लेकिन बदकिस्मत होगा वो शख्स के जो इस तमसील के अल्फाज में उलझ कर रह जाए। तो ये तवज्जो दिलाई कि ये जब देखते हैं, यानी ना मानने वाले, तो कहते हैं कि ये किस तरह की मिसाल है, क्या खुदा को तमसील के लिए मक्खी और मच्छर ही मैसर हुए हैं। इसको अदा किया है कुरान मजीद ने कि माज़ा अराद अल्लाह बिहाज़ा मसला, और अब फरमाया है कि ये देखिए अल्लाह ताला का जो हिदायत और गुमराही का कानून है वो क्या है, उसकी तरफ इशारा किया। फरमाया कि ये वो सूरतयाल होती है कि जिसमें अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करता और बहुतों को राह दिखाता है। यानी एक ही बात है, हमने उससे ये समझा कि अल्लाह ताला ने पत्थर के माबूदों की बेबसी और बेवक्ती वाजे कर दी है। यानी ये खूबसूरत तमसील में ये बता दिया है कि जो अपनी नाक से मच्छर भी नहीं उड़ा सकते, मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, उनको माबूद बनाओगे, उनको खुदा बना के पूजोगे, तो जो हकीकत उनमें बयान हुई थी, मानने वाले उस पर निगाह रखेंगे और ना मानने वाले उस तमसील के अल्फाज में उलझ कर रह जाएंगे। चुनाचे इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि इसी से ये बात समझ लो कि अल्लाह ताला के यहाँ हिदायत किनको मिलती है और अल्लाह के यहाँ कौन गुमराह कर दिए जाते हैं। तो ये फरमाया कि अल्लाह इसी तरह से, यानी इस तरह की कोई मिसाल बात बयान करके, मुतशाबहात का तरीका इख्तियार करके, कोई ऐसी बात कह कर के जिसके दो पहलू हों, लोगों को इम्तहान में डाल देता है। और कुछ लोग वो होते हैं कि जो एक गलत रवैया इख्तियार करके अपने लिए गुमराही खरीद लेते हैं। जब इंसान किसी चीज़ को सही जाविये से देखने से इनकार कर देता है तो अल्लाह ताला कुछ वक्त के लिए उसे मोहलत देते हैं, उसके बाद फिर उनका कानून हरकत में आ जाता है और उस आदमी के लिए बतदरीज हिदायत पाने के दरवाज़े बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसके बिल्कुल बरखिलाफ़, अगर कोई आदमी सही रुख इख्तियार करे, सही जाविये से चीज़ों को देखे, बात को सही जगह से समझने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके दिल पर सकीनत नाजिल करते हैं और बतदरीज उसके सामने हकायक खुलना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर से अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाते हैं और उसके हवास जो कुछ उसको दिखाते हैं उनसे भी वो सही नतायज निकालता है, और फिर जिन चीज़ों का इस्तेमबात करता है वो भी बिल्कुल सही तरीके से सामने आती हैं। तो ये चीज़ उस वक्त इंसान को हासिल होती है जब वो अल्लाह की दी हुई हिदायत की कदर करता है। इसको एक कानून के तौर पर बयान किया कि अगर ये समझना चाहते हो कि कुरान जो ये कहता है कि अल्लाह गुमराह भी करता है और अल्लाह हिदायत भी देता है, तो वो कैसे गुमराह करता है और कैसे हिदायत देता है, यानी वो एक ऐसी बात सामने रख देता है जिसका एक पहलू वो होता है कि अगर आदमी सही रवैया इख्तियार करे तो बहुत बड़ी हकीकत को उससे पा लेगा, और अगर गलत रवैया इख्तियार करे तो उसी एक बात से अपने लिए गुमराही का सामान कर लेगा। इसको यहाँ भी बयान किया कि मक्खी और मच्छर की तमसील बयान कर दी। कुछ लोगों ने उसके अंदर की हकीकत पर तवज्जो की और एक मुहकम बात तक पहुँच गए, और कुछ ने उसके अल्फाज को उलझने का सबब बनाया और अपने आप को गुमराही के रास्ते पर डाल दिया। तो अल्लाह इस तरह गुमराह करता है और अल्लाह इस तरह हिदायत देता है। और फरमाया कि ये ख्याल ना करो कि ये कोई अलटप मामला होता है। आगे उसकी वजाहत की, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। और हकीकत ये है कि, यानी ये जुमले की जो साख्त है उससे मैंने इसको निकाल दिया है, और हकीकत ये है कि वो इससे किन को गुमराह करता है, उनको गुमराह करता है जो इस तरह के सरकश होते हैं, यानी वो इस तरह के सरकशों ही को गुमराह करता है। ऐसे नहीं है कि इंसान हिदायत का सच्चा तालिब हो और वो उसको गुमराह करते। तो इस रोशनी में जो ये कुरान मजीद ने यहाँ पर ख़ुद वाज़े कर दिया है, जिन जिन जगहों पर इस नौईयत की आयात आती हैं कि अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह गुमराह करता है, उनको समझ लीजिए, वो अल्लाह के कानून का बयान होता है, वो एक सुन्नत इलाही का बयान होता है जो अल्लाह ताला ने हिदायत और जलालत के मामले में मुकर्रर कर रखी है। मैंने अपनी किताब मीज़ान में जहाँ सुन्नत इलाहिया का बाब लिखा है वहाँ इन तमाम चीज़ों को बयान कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मुतकल्लमीन को क्या गलती लगी है। यहाँ कुरान ने खुद तनब्बो करके बता दिया कि खुदा के कानून का बयान है, खुदा किनको गुमराह करता है, इस तरह के सरकशों को गुमराह करता है। सीधी बात को सुनने के बजाय जो उसके अंदर से तरह तरह के मजमून पैदा करते हैं, मीन मेख निकालते हैं, मुँह शगाफियाँ करते हैं, लफ्ज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। जो बात कही जा रही है वो हर सलीमुल फितरत इंसान की समझ में आती है लेकिन एक उन्हीं की समझ में नहीं आती। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनको जब अल्लाह देख लेता है कि ये सरकशी पर उतरे हुए हैं, इनको गलती नहीं लगी हुई, ये अपने आप को खुद गलती में डालने पर इसरार कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को फिर अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। ये दुनिया में खुदा की तरफ से दी जाने वाली सज़ा होती है, यानी एक वक्त तक मोहलत, बार बार की तवज्जो, बार बार की तंबी, जब इंसान नहीं संभलता तो फिर अल्लाह ताला भी उसको उसी रास्ते के ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसे सरकशों ही को करता है। ये जो इरशाद फरमाया कि गुमराह तो ऐसे सरकशों ही करता है, तो ऐसे से क्या मुराद है? इसमें अलिफ लाम है जिसका तर्जमा मैंने इस तरीके से किया है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और आगे कुछ सिफात बयान हुई हैं जो उंगली उठा रही हैं कि ये किन का ज़िक्र है। चुनाचे मैंने लिखा है कि ये इशारा है यहूद की तरफ, यानी वही चूंकि इस तरह की बातें अलका भी कर रहे थे, वही इस तरह की बातें पहले तौरात और इंजील और जबूर से निकाल कर अपने लिए गुमराही का अहतमाम कर बैठे, और वही इस वक्त रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी अपना पुराना रवैया इख्तियार किए हुए थे। चुनांचे ये इशारा है यहूद की तरफ। इससे आगे उनके वो जरायम बयान हुए हैं जिनके बायस वो तौफीक हिदायत से महरूम हुए, यानी एक गिरोह की, एक जमात की, एक फ़िरके की मिसाल दे दी है कि ये एक मुसलमान गिरोह था, एक मुसलमान फ़िरका था, इसकी तरफ खुदा के पैगंबर आए थे, इसकी तरफ इस्लाम की हिदायत आई थी, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन ये देखो कि इन्होंने अपने साथ इस रवैये की वजह से क्या कर डाला। तो उनकी मिसाल दे के यसरब के मुशरिकीन को समझाया है, यानी माजी के लिहाज से भी नहायत मौसर मिसाल है, और उस वक्त भी यहूदी इस तरह की हुज्जत तराजियों के पीछे थे, इस वजह से गोया पर्दा उठा दिया है लेकिन नाम नहीं लिया, यानी ऐसी सिफात बयान की हैं जो उंगली उठा के इशारा कर रही हैं कि ये किस गिरोह का जिक्र है। तो इरशाद फरमाया कि ऐसे सरकशों ही को करता है। सरकश के लिए जो लफ्ज़ असल में इस्तेमाल हुआ है वो फासिक है। चुनाचे इस पर बयान का नोट है, असल में लफ्ज़ फासिक इस्तेमाल हुआ है। क़ुरान मजीद की इस्तलाह में इसके मानी मारूफ से मुनकर और इताअत से नाफरमानी की तरफ निकल जाने के हैं, यानी दुनिया के अंदर जानी पहचानी भलाइयाँ हैं, अल्लाह ताला ने उनका शऊर इंसान की फितरत में वदियत किया है। कुरान अपनी इस्तलाह में उनको मारूफ कहता है। जब आदमी मारूफ को छोड़ देता है और उसकी सारी दिलचस्पी मुनकरात से होती है, और जब वो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के दाइयात के बजाय अपने आप को नाफरमानी के रास्ते पर लेके निकल जाता है, तो इसके लिए जो एक लफ्ज़ कुरान मजीद इस्तेमाल करता है वो लफ्ज़ फासिक है। तो इरशाद फरमाया कि ऐसे सरकशों को गुमराह करता है। अब आगे की सिफात देखिए जिससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि ये किन की तरफ इशारा है। अल्लदीन यनकुदून अहदल्लाह मिन बाद मीसाकही, जो अल्लाह के अहद को उसके बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। ये अगर कुरान मजीद को पढ़ा है और तदब्बुर के साथ पढ़ा है, और आगे सूरह बकरा को और उससे आगे की सूरतों को आप पढ़ेंगे, तो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ये किन का ज़िक्र हो रहा है। चुनाचे मैंने लिखा है कि यहूद ये अहद किस तरह बांधते और तोड़ते रहे, इसकी तफसीलात आगे सूरह में बड़ी वजाहत के साथ बयान हुई। यानी आगे सारा का सारा बयान ही ये है कि परवरदिगार ने जो मिसाक उनसे लिया था, जो अहद उनसे लिया था, उसके साथ उन्होंने क्या मामला किया, यहाँ उसको बयान किया है। अल्लज़ीन यनकुदून अहदल्लाह मिन बाद मीसाक, ये अल्फाज भी वही इस्तेमाल किए हैं जो आगे इस्तेमाल होंगे। और फिर फरमाया وَيَكْتُمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل، और अल्लाह ने जिस चीज़ के जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं। वो क्या चीज़ है जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है, वो क्या चीज़ है जिसको काटते हैं? मैंने लिखा है इससे मुराद रिश्ता रहम और रिश्ता कराबत का काटना है। ये कुरान मजीद की ख़ास ताबीर है। यानी इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो नज़्म कायम किया है उसमें ये तो उसूल की बात है कि सब आदम हव्वा की औलाद है और इस लिहाज से सब बहन भाई हैं, लेकिन फिर इनके अंदर कुछ रिश्ते वजूद में आते हैं, ये कुर्ब ताल्लुक़ से वजूद पजीर होते हैं। यानी मुझे एक औरत ने जना है, ये जो करीबी ताल्लुक़ पैदा हुआ है, यानी अगरचे उससे पहले भी आदम हव्वा से लेकर ये अमल जारी रहा है, लेकिन जो करीबी ताल्लुक़ पैदा हुआ है उससे मेरा उसके साथ माँ और बेटे का ताल्लुक़ पैदा होता है, बाप और बेटे का इसी तरह का ताल्लुक़ है, रिश्तेदारों और अजीज़ों का इसी तरह का ताल्लुक़ है। तो ये जो रहम का रिश्ता है, इस रहम के रिश्ते से हम एक ताल्लुक़ अपनी फितरत में महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने भी इसको अहमियत दी है और ये फरमाया है कि इस ताल्लुक़ को तोड़ना नहीं चाहिए, इसके हुकूक को समझना चाहिए। यानी माँ है तो माँ की हैसियत से, बाप है तो बाप की हैसियत से, बहन भाई हैं तो बहन भाइयों की हैसियत से, इंसान के अंदर ये दाइया होना चाहिए कि वो बहुत फराख दिली के साथ अगर कोई किसी दूसरे की तरफ से ज़्यादती भी हुई है तो उसको नज़रअंदाज करने वाला बने और कभी इस रिश्ते का न तोड़े, हमेशा इन हुकूक़ को अदा करने वाला बने। अगर जवाब में अच्छा रवैया मिला है और दूसरों ने भी हुकूक़ अदा कर दिए हैं और आप अच्छे रहे तो ये कोई कारनामा नहीं है। असल चीज़ ये है कि किसी हाल में भी रिश्ता रहम को आदमी तोड़ने की तरफ न बढ़े। तो फरमाया कि भैया तऊन मा अमर अल्लाह बिही यूसल, जिस चीज़ को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं। इससे मुराद रिश्ता रहम और रिश्ता कराबत का काटना है। कुरान ने ये उसलूब जहाँ भी इख्तियार किया है मौका कलाम की दलालत से वाज़े है कि रिश्ता रहम व कराबत के लिए इख्तियार किया, यानी ये कुरान का ख़ास अंदाज़ है इस बात को बयान करने का। इसमें जो इबहाम है, यानी ये नहीं कहा ना कि रिश्ता रहम को काटते हैं, ये अल्फाज इख्तियार किए हैं, अल्लाह ने जिस चीज़ के जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते हैं, तो एक इबहाम का उसलूब इख्तियार किया है। इसमें जो इबहाम है उससे रिश्ता रहम की अज़मत वाज़े होती है। गोया ये ऐसी मारूफ और बदी हकीकत है कि इसका नाम लिए बगैर ही हर शख्स समझ लेता है कि वो क्या चीज़ है जिसे खुदा ने काटने का नहीं बल्कि जोड़ने का हुक्म दिया है। यानी इतनी बात कहते ही वाज़े हो जाना चाहिए कि जोड़ने की चीज़ क्या है। ये ताल्लुकात, ये रवाबित, ये रिश्ते, असल में ये रवाबित और रिश्ते हैं जो ज़िंदगी का हुस्न है। इन्हीं के हुकूक को जब इंसान अदा करता है तो इससे ज़िंदगी में राहत पैदा होती है, इसी से इंसान को एतमाद हासिल होता है और मुश्किल में, तकलीफ़ में इंसान एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। ये दुनिया बड़ी मुश्किलात की जगह है, इसमें बीमारियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, जंगो जदाल के बार के होते हैं, मालूम नहीं ज़िंदगी में क्या नशेब व फराज़ होंगे। इसमें इंसान जब नेकी, खैर और रिश्तों के इज़्ज़त और एहतराम पर खड़ा होता है तो फिर वक्त आने पर खुदा उसके लिए भी एहतमाम करता है। रिश्तेदार अच्छा जवाब नहीं भी देंगे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और अल्लाह दूसरे असबाब पैदा कर देगा। इस वजह से अगर किसी फ़र्द ने या गिरोह ने ये क़त रहमी का तरीका इख्तियार किया है तो उसने बड़े गुनाह का इरतकाब किया है। चुनाचे हमारे दीन में क़त रहमी कबीरा गुनाहों में से है और यहूद के यहाँ चूँकि ये मामला हुआ, इस वजह से ख़ास तौर पर इस जानिब तवज्जो दिलाई है। और अगर आप गौर करें तो ये मामला सबसे बढ़कर उन्होंने बनी इस्माईल के साथ किया है। इसके बहुत से वो पहलू हैं जो आगे इस सूरह में ज़ेर बहस आएंगे। अल्लाह ने जिस चीज़ के जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं, वह युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, और इस तरह ज़मीन में फसाद पैदा करते हैं। यानी अल्लाह ताला से अहदो पैमान तोड़ने के बाद जब ये दूसरा कदम भी उठा लेते हैं तो इससे ज़मीन में फसाद बरपा हो जाता है। अगर रिश्ते टूट गए, ताल्लुकात की कदर व कीमत ख़त्म हो गई, तो फिर यूँ समझ लीजिए कि ये ज़मीन जानवरों का बट बन के रह जाएगी। फिर यहाँ सलाह, फलाह, अमन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये इंसानियत के रिश्ते का एहतराम है जो अगर लोगों के अंदर पैदा हो जाए तो किसी कानून और किसी रियासत की ज़रूरत नहीं रहती। यानी जब हमने मान लिया कि आदम व हव्वा की औलाद इंसान है और इस रिश्ते से हम सब बहन भाई हैं, तो आप ये देखिए कि इसके बाद जो इंसानियत का रिश्ता कायम होगा उससे वो सारे हुकूक आप से आप तय हो जाएंगे। यानी अब हम किसी की जान के ख़िलाफ़, किसी के माल के ख़िलाफ़, किसी की आबरू के ख़िलाफ़ किसी इकदाम का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। और जब फिर ईमान का रिश्ता भी उसमें शामिल हो जाएगा तो वो बात पैदा होनी चाहिए ना, जिसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसाने ही व यदे ही। यानी मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लोगों के लिए अमन का पैगंबर बनकर ज़िंदगी बसर की जाए, ये अल्लाह का हुक्म है। और अगर ये ना हो, रिश्ते काट दिए जाएँ, अहद तोड़ दिए जाएँ, ज़िंदगी के मामलात को शैतान के हवाले कर दिया जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा वो निकलेगा जिसको यहाँ बयान किया, वह युफ़सिदून फ़िल अर्ज़। ये नतीजे का बयान है। यानी अल्लाह ताला से अहद व पैमान तोड़ने के बाद जब ये दूसरा कदम भी उठा लेते हैं तो इससे ज़मीन में फसाद बरपा हो जाता है। अल्लाह से अहद तोड़ दिया, यानी जो खालिक था, मुने में हकीकी था, उससे मामलात ख़त्म हो गए। और जब रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो गया तो इस दुनिया के अंदर खुदा ने जो ताल्लुकात की अखलाकियात कायम की थी वो भी बर्बाद होकर रह गई। और जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो गईं तो फिर फसाद पैदा होगा और कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए कि तमद्दुन और माशरत में सलाह व फलाह की बुनियाद अल्लाह ताला के तकवा और रिश्ता रहम की हुरमत ही पर कायम है। दो ही चीज़ें हैं जिन पर इस दुनिया का अमन कायम होता है, जिसमें सलाह व फलाह पैदा होती है, जिसके नतीजे में दुनिया जन्नत बनती है। वो ये कि एक तरफ लोग खुदा से डरने वाले हों जन्नत में, खलवत में, हर जगह, और दूसरे ये कि जो रिश्ते पैदा होते हैं उनका ठीक ठीक हक अदा करने वाले। ये दोनों चीज़ें जब पैदा हो जाती हैं तो दुनिया के अंदर खुदा की रहमत आ जाती है। और जब इनमें से कोई एक चीज़ टूटती है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी इंसानियत बर्बादी के हवाले होना शुरू हो जाती है। और अगर दोनों टूट जाएँ तो फिर फसाद ही फसाद है, फिर किसी और चीज़ की आप तवक्को नहीं कर सकते। तो यहाँ फरमाया कि उलाएका हुमुल खासिरून, यही है जो नामुराद है, यानी दुनिया में भी नामुराद, आखिरत में भी नामुराद। इसको मैंने खोल दिया है, उसके साथ ये बता दिया है कि इसमें क्या चीज़ है कि जिसको बयान करना मकसूद है। इससे एक तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में जब आप आगे चलकर इसकी तफसीलात देखते हैं तो बिल्कुल ठीक यहूद नुमाया हो जाते हैं, और ये उन्हीं की तरफ इशारा करके यसरब के मुशरिकीन को, मैं बार बार इस जाने तवज्जो दिला रहा हूँ कि जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई हैं वो आगे आएंगी, आगे पूरे पूरे बाब आएंगे जिनमें मक्कियात कई सूरतों की शक्ल में मौजूद हैं, उनमें हम देखेंगे कि वहाँ पर मुशरिकीन अरब को मुखातब किया है बहसियत मजमुई, बिलखसूस कुरैश को मुखातब किया है, मक्के के कुरैश को, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को। लेकिन यहाँ जब खिताब किया है तो खिताब में जो बातें कही गई हैं वो यहूद से मुतल्लक नहीं हो सकती। आगे यहूद से खिताब करना है, वहाँ यहूद मुखातब होने वाले हैं, उन पर इत्माम हुज्जत मकसूद है। मुशरिकीन पर इत्माम हुज्जत हो गया है उसके बाद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है, लेकिन यहाँ भी कुछ मुशरिकीन मौजूद हैं, ये औसो खजरज के मुशरिकीन हैं और ये वही मुशरिकीन अरब हैं, उन्हीं का हिस्सा हैं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए इनको खिताब करके तवज्जो दिलाई है कि तुम्हारे पास खुदा की बहुत बड़ी रहमत आई है, खुदा का पैगंबर तुम्हारे दरमियान आ गया है, और ये मदीना ये अब दुनिया की तारीख में गैर मामूली मकाम हासिल करने वाला है। इसके ज़रिए से खुदा की दिनूनत बरपा होगी, खुदा की हुज्जत कायम होगी, खुदा की आखिरी दावत बरपा होगी, ये अल्लाह की किताब पूरी इंसानियत को दिया जाएगी, बहुत बड़ा शरफ़ हासिल होने वाला है। अब कहीं ऐसा ना हो कि यहूद हुज्जत तराजी का मजाक तुम्हारे अंदर पैदा कर दें, तमसीलात से उसी तरह के फितने पैदा करने का मजाक पैदा कर दें जो फितने उन्होंने खुद पैदा किए हैं। अगर तुम इस तरीके से इनकी साजिश का शिकार हो गए तो बड़ी नेमत से महरूम हो जाओगे, इसलिए मतनबे हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला जब कलाम फरमाते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि आदमी चाहे तो हकीकत की तरफ रजू करे और चाहे तो उससे कोई फितना पैदा कर ले, और बिलखसूस जब उमूर मुतशाबिहात को बयान किया जाता है तो ये चीज़ और भी नुमायाँ हो जाती है। इसलिए कभी ये ख्याल न करना कि इस तरह की चीज़ों से तुम अगर गलत मतलब निकालोगे तो खुदा छोड़ देगा, नहीं, एक वक्त तक तो ज़रूर मोहलत देगा, और तवज्जो भी दिलाई जाएगी, और कुरान मजीद भी तवज्जो दिलाएगा, और पैगंबर भी तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जिसके बाद फिर अल्लाह ताला गुमराही के हवाले कर देंगे। तो अल्लाह ताला के हिदायत और जलालत के कानून को इब्तदा में वाज़े कर दिया है, और ये यहाँ वाज़े कर दिया है, आगे पूरी की पूरी सूरा में ये बात वाज़े हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने यहूद के ऊपर इसका इंतबाक करके दिखा दिया है कि ये देखो कि ये लोग हैं कि जब इन्होंने सरकशी इख्तियार कर ली, जब अल्लाह के अहद को तोड़ने का फ़ैसला कर लिया, जब रिश्ता रहम तक की अजमत इनके यहाँ ख़त्म हो गई, जब इन्होंने ज़मीन में फसाद बरपा कर दिया, तो फिर उसके बाद खुदा ने इनके लिए हिदायत की राह नहीं खोली, पैगंबर इनके दरमियान में मौजूद है, इसके बावजूद ये तौफीक हिदायत से महरूम रहे। अब इन आयात का सादा तर्जमा सुन लीजिए, ये जन्नत की तमसील है, और अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि किसी हकीकत की वजाहत के लिए वो मच्छर या इससे भी हकीर किसी चीज़ की तमसील बयान करे। फिर जो मानने वाले हैं वो जानते हैं कि ये उनके परवरदिगार की तरफ से हक आया है, और जो नहीं मानते वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या चाहा, इस तरह अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करता और बहुतों को राह दिखाता है, और हकीकत ये है कि वो इससे गुमराह तो ऐसे सरकशोई को करता है जो अल्लाह के अहद को उसके बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं, और अल्लाह ने जिस चीज़ के जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं, और इस तरह ज़मीन में फसाद बरपा करते हैं, यही है जो दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद। अकूलो कौली हाजा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुमिनीन।